हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बिहेव योरसेल्फ सिद्धार्थ, अभी कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी इस हरकत का असर ज्यादा ना पड़े। ये बोलकर देर ना करते हुए वो तुरंत वहां से दूर खड़ी हो गई। वहीं रणनजय बड़ी ही दिलचस्पी से सारा मामला देख रहा था। आर्यन मुंह लटकाए एक तरफ बैठा हुआ था। हालांकि आकांक्षा को झलक के जैसा देखकर उसके दिल के जज्बात एकदम बाहर आने लगे थे। उसका दिल कर रहा था कि वो झलक को गले से लगा ले और उसे अपने किए की माफी मांग ले। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने झलक के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, लेकिन जैसे ही उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया वो वहीं बैठा रहा, क्योंकि उसके पिता की नज़रें लगातार उसी पर बनी हुई थीं। फिलहाल अब सभी लोगों की नज़रें सिद्धार्थ पर टिक गई थीं। सिद्धार्थ समझ चुका था कि सभी लोग उसे किसी खास नज़र से देख रहे थे। तुरंत ही आगे बढ़कर उसने आकांक्षा के गहनों को बड़े ही प्यार से छुआ और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। ये दृश्य देखकर चारों तरफ जल्दी ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी देर पहले सभी लोगों को मिला चाट मसाला पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दादी ने भी प्राउड नज़रों से सिद्धार्थ को देखा और बड़े ही गर्व से कहा कि अगर कोई खुराना परिवार की इज्जत को संभालेगा तो मेरा पोता सिद्धार्थ ही होगा। रणविजय काफी गुस्से में था, लेकिन फिलहाल उसने सब्र करना सीख लिया था। वो जानता था कि जिस तरीके से वो यहाँ सब्र करेगा उतना ही उसे आगे चलकर फल मिलने वाला है। ये सोचकर वो अब शांति बनाए हुए वहीं खड़ा रहा। फिलहाल जल्द ही धूमधाम के साथ शादी की रस्में पूरी होने लगी। जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ीं, फेरों के लिए पंडित जी ने दोनों को उठा दिया। धीरे धीरे करके एक एक फेरा पूरा होने लगा। एक, दो, तीन, इस तरीके से फेरे होते चले गए। पांच फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक कहीं से घरघराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। जितने भी गेस्ट वहां मौजूद थे और जितने भी मीडियाकर्मी वहां खड़े थे, सभी की नज़रें इधर उधर घूमने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। ऐसा लगने लगा मानो कोई भयानक तूफान आ गया हो। सिद्धार्थ खुराना के गार्डन में जहां मंडप लगा हुआ था वहां तक सब कुछ डगमगाने सा लगा। मंडप हिलता हुआ सा दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो या तो कोई तूफान आ गया हो या फिर जमीन में भूकंप आ गया हो। सभी लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा बेहद खूबसूरत प्राइवेट जेट वहां आकर लैंड हुआ। अचानक शादी में प्राइवेट जेट को देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सभी लोगों को लगने लगा कि सिद्धार्थ खुराना के तो विदेशों में भी बड़े व्यापारिक संबंध हैं। तभी तो कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने प्राइवेट जेट से उनकी शादी में आया है। कुछ ही पलों के लिए वहां उड़ती धूल मिट्टी की वजह से किसी को कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। वहीं आकांक्षा हैरानी से बोली कि क्या ये जेट यहीं लैंड होना जरूरी था, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि अच्छा ही हुआ उसकी शादी में इतना बड़ा और महंगा प्राइवेट जेट आया है। इससे उसकी और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और सारा मीडिया इस चीज़ को कवर करने लगेगा। तभी कुछ और लोग भी खुशी खुशी अपने लहंगे और साड़ियां संभालते हुए उस जेट को देखने लगे। वहीं सिद्धार्थ मंडप में बैठा हुआ था। उसने किसी तरह का कोई इमोशन जाहिर नहीं किया। वो बिना भाव बदले प्राइवेट जेट को देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जेट के आने की वजह से सब कुछ एकदम तूफान सा हो गया था। हालांकि कुछ लोग खुशी खुशी जेट को देखकर ये सोचने लगे थे कि इतना महंगा जेट सिद्धार्थ की शादी में जरूर किसी इंटरनेशनल मेहमान को लाने के लिए आया होगा। वहीं रणविजय थोड़ा सा सच में परेशान हो गया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने किसी भी बाहरी इंसान को शादी में आने की परमिशन नहीं दी थी। सिर्फ शहर के ही पॉपुलर और बड़े लोगों को बुलाया गया था। तो फिर इस तरीके से इतने महंगे और बड़े जेट में आखिर कौन आ सकता है? सभी लोग अपने अपने ख्यालों में उस जेट की तरफ देखने लगे थे। उर्वशी जी भी इस वक्त नाकूंची किए हुए ये सोचने लगी थी कि आखिरकार उनके पोते की शादी है तो इतने अमीर लोगों का आना तो बनता ही है। मीडिया भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था और सारा फोकस उसी जेट पर कर दिया गया था, क्योंकि वो कोई हल्का फुल्का जेट नहीं बल्कि एकदम लग्जरी जेट था। उसे देखकर सभी लोगों को काफी अच्छा और प्राउड सा महसूस हो रहा था कि वे ऐसे भव्य नज़ारे का हिस्सा बने हैं। ठीक उसी वक्त अचानक जेट का दरवाजा खुला और एकदम काले रंग के सूट बूट में एक बेहद खूबसूरत शख्स बाहर आया। उसने अपनी गहरी काली आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। उस शख्स को देखकर सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं, स्पेशली सिद्धार्थ खुराना की, जो अब तक आराम से मंडप में बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइवेट जेट से उतरने वाले शख्स पर पड़ी, वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि प्राइवेट जेट में से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि झलक मल्होत्रा थी। झलक को वहां इस रूप में देखकर दादी, रणविजय, नैना ओबेरॉय, साथ ही साथ ईशान ओबेरॉय और सब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। नैना, आकांक्षा और दादी तो बार बार अपनी आंखें मसल मसल कर अपने सामने खड़ी झलक को देख रही थीं। झलक के जेट से उतरते ही उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड तुरंत ही बंदूक के लिए खड़े हो गए थे। झलक को कौन नहीं जानता था, कुछ महीने पहले ही सिद्धार्थ खुराना की पार्टी में उसका अच्छा खासा तमाशा बना था। हालांकि सिद्धार्थ की पावर और पोजीशन की वजह से उस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया था, लेकिन अब झलक को जिंदा और सही सलामत देखकर खबरें एक बार फिर तूफान की तरह उठने लगी थी। और चारों ओर अफरा तफरी मचने लगी थी। झलक ने किसी को भी एक नजर उठाकर नहीं देखा और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गई जिस कमरे में वो पहले रहा करती थी। जैसे जैसे वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था, वो तो बस हैरानी से झलक को देखता जा रहा था। उसे अपने दोस्तों से भी ये कहने का होश नहीं था कि झलक जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ी है। झलक सीधे उस कमरे में गई और वहां पहुंचकर उसने दराज में से वो लॉकेट निकाला जिसके लिए वो यहां आई थी। वही लॉकेट जो अनामिका ने उसे दिया था, जिसमें उसकी माँ की फोटो लगी हुई थी। उस लॉकेट को हाथ में लेते ही झलक ने गहरी सांस ली और फिर जिस तूफान की तरह वो आई थी, उसी तूफानी अंदाज में वापस निकल पड़ी। वो सीधे आकर दादी के सामने खड़ी हो गई और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मिसेस खुराना, आपके घर में मेरा एक इम्पोर्टेंट सामान रह गया था, मैं सिर्फ वही लेने आई थी। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था मानो वो दादी के मुंह पर तमाचा मार रही हो। इसके बाद बिना सिद्धार्थ या किसी और की तरफ देखे वो तुरंत पलटी और जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गई। उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड भी वापस जाकर जेट में सवार हो गए और कुछ ही पलों में प्राइवेट जेट वहां से उड़ान भर चुका था। प्राइवेट जेट के उड़ते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पल पहले जो जगह शोर, फुसफुसाहट और कैमरों की चमक से भरी हुई थी, अब वहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शादी के मंडप के ऊपर अचानक कोई भारी पर्दा डाल दिया हो। दादी अब भी अपनी जगह पर जर्सी खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, हैरानी भी और कहीं ना कहीं डर भी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? रणविजय ने मुठ्ठियां भींच ली, उसके चेहरे पर तनाव साफ छलक रहा था। मैंने कहा था ना दादी, कुछ बातें अभी अधूरी हैं, वो धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला। नैना ओबेरॉय ने इधर उधर देखा मानो दीवारों के भी कान हों। मीडिया अभी यही है, अगर जरा सी भी बात बाहर गई तो हमारी इज्जत का तमाशा बन जाएगा, उसने फुसफुसाकर कहा।
उधर सिद्धार्थ अब भी मंडप के बीच खड़ा था। उसके लिए शादी, मेहमान, रस्में, सब कुछ जैसे एक झटके में गायब हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बस झलक का चेहरा घूम रहा था, जिंदा, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा बेपरवाह। वो जिंदा वापस आई? वो खुद से ही बुदबुदाया। पंडित जी ने असहज होकर गला साफ किया। शादी की रस्में आगे बढ़ाई जाएं? ये सुनते ही आकांक्षा ने सिद्धार्थ की ओर देखा, जहां केवल तूफान था और ऊपर से झलक का आना, और वो भी इतने पावरफुल अंदाज में, ये तो आकांक्षा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वहीं रणविजय के माथे पर इस वक्त पसीना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें तो अब भी उसी प्राइवेट जेट और झलक की ओर ही टिकी हुई थीं। वो चाहकर भी अपनी आंखें वहां से हटा नहीं पा रहा था। लेकिन इतना सब कुछ आकांक्षा संभाल नहीं पाई और वो अचानक पूरी तरह से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। नैना ओबेरॉय की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी, वो भी वहीं अनकॉन्शियस हो गई। जल्दी ही नैना और आकांक्षा दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसी पल दूर आसमान में उड़ता हुआ जेट बादलों में गुम हो चुका था। उधर झलक अपनी सीट पर शांत बैठी थी, उसकी उंगलियां उस लॉकेट को कसकर थामे हुई थीं। उसकी आंखों में न आंसू थे न डर, बस एक ठंडी सी चमक थी। खेल शुरू हो चुका है, उसने खुद से कहा, और इस बार मैं हारने नहीं वाली। उधर मीडिया में अब हर जगह सिद्धार्थ खुराना की शादी की खबरें छाई हुई थीं। जो शादी कुछ घंटों पहले तक भव्य और परफेक्ट बताई जा रही थी, अब उसी के टूटने की खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थीं। हर चैनल पर यही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ खुराना की शादी अधूरी रह गई। झलक ने जानबूझकर अपनी एंट्री की वीडियो और वहां से जाने वाली वीडियो को मीडिया में शूट करने से अपनी गार्ड्स के जरिए मना करवा दिया था, क्योंकि वो वहां खुद को किसी भी तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वापसी को तमाशा बनाया जाए। वहीं ये खबर अनामिका तक भी पहुंच चुकी थी कि सिद्धार्थ खुराना की शादी टूट गई है और उसकी होने वाली पत्नी अस्पताल में भर्ती है। अनामिका पहले तो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, शादी की इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? उसी वक्त मेंशन के ठीक सामने एक प्राइवेट जेट के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। अनामिका चौंक कर बाहर की तरफ भागी। जैसे ही उसने झलक को जेट से उतरते देखा और उसके हाथ में वही जाना पहचाना लॉकेट देखा, तो उसे सब कुछ एक पल में समझ आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और झलक को गले से लगा लिया। झलक ने भी बिना कुछ कहे उसे कसकर पकड़ लिया। फिर झलक ने वही लॉकेट निकालकर अनामिका के गले में पहनाते हुए कहा, तुम्हारा लॉकेट मैं वापस ले आई। अनामिका ने हैरानी और उत्सुकता से सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन तुम अचानक वहां कैसे चली गई? ये सब कुछ कैसे हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती, मैं भी उन लोगों की शक्ल देखती। बताओ, वहां जाकर तुमने क्या क्या किया? किसका मुंह तोड़ा? किस पर गुस्सा निकाला? कोई जिंदा है या मर गया? तुमने ओबेरॉय परिवार के साथ क्या किया? अनामिका की एक्साइटमेंट और बेचैनी देखकर झलक ने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए कहा, बस सांस लो अनामिका, ये कोई फिल्म नहीं थी। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। मैंने वहां किसी को मारा नहीं, ना ही कोई तमाशा किया। मैं सिर्फ अपना हक लेने गई थी और उन्हें ये दिखाने कि झलक मल्होत्रा मरी नहीं है। झलक की आंखों में अब दर्द, मजबूती और सुकून तीनों एक साथ झलक रहे थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, उसने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है।